ओम शांति। सेल्फ केयर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आत्मा के दिव्य गुणों की इस सीरीज के अंदर हम अनेक गुणों के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। आशा है आप इन सभी गुणों का और चिंतन करके अपने जीवन में उसके अनुभवों को और रिच कर रहे होंगे। इन गुणों को एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर इनका लाभ भी ले रहे होंगे। इन गुणों में आप जिन जिन गुणों को आप प्रयोग कर रहे हैं उनको और ज़्यादा प्रयोग कर सकें और उसका ज़्यादा लाभ ले सकें, इस लक्ष्य से ये सीरीज़ में हम इन गुणों के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। क्योंकि आध्यात्मिकता जो है आत्म उन्नति के लिए और आत्म उन्नति के अंदर आत्मा के गुणों का प्रयोग हमें आत्म उन्नति में मदद करता है। हर एक चाहता है अपनी उन्नति, अपने जीवन में हर एक आगे बढ़ना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है और उस प्रोग्रेस के लिए या उस सफलता के लिए अगर हम अपने राइट चॉइसेस करते हैं, गुणों को अपना सहयोगी बनाते हैं तो उससे हमें जो अचीवमेंट्स प्राप्त होती है या अनुभूतियाँ होती है जो हम अपने सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन अनेकों के लिए उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह से ये जो कोऑपरेशन का गुण है, सहयोग का गुण, आज जिस पर हम चिंतन करेंगे, सहयोग का गुण एक विशेष गुण इसलिए है क्योंकि ये गुण जो हम प्रयोग करते हैं दूसरों के साथ संपर्क में आते हुए दूसरों के गुणों को भी अपने साथ मिलकर के कार्य करने की क्षमता जो है ये डेवलप करता है सहयोग का गुण। तो सहयोग हर कोई चाहता है अपने जीवन के अंदर, दूसरों से सहयोग प्राप्त करता है और दूसरों को हम सब सहयोग देते भी हैं। तो क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और हर कोई को एक दूसरे की ज़रूरत है और हर कोई आगे बढ़ सकता है एक दूसरे के सहयोग से और अपने जीवन के अंदर जो ऊंचाइयों पर हासिल कर सकता है, अपने ऊंचे लक्ष्य को हासिल कर सकता है हर एक के सहयोग से। ऐसा कोई भी नहीं है जो कहे कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। हर कोई को एक दूसरे की ज़रूरत होती है और सहयोग का गुण अगर हम अपने जीवन में अपना लें, इसका प्रयोग करें तो वही सारे कार्य ना वही सारी कारोबार हमारी ईजी हो जाती है। इसीलिए इस सहयोग के गुण को आज हम इस पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह आप अपने जीवन के अंदर सहयोग का गुण प्रयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ आप सहयोग दे रहे हैं और कहाँ से सहयोग ले रहे हैं, उसमें आपके अनुभव कैसे हो रहे हैं, उनको और ज़्यादा शक्तिशाली बना सके, उसके लिए थोड़ा सा चिंतन आज पुनः हम आपके साथ शेयर करेंगे। सहयोग जो चाहता है या जो सहयोग करना चाहता है, दूसरों को सहयोग देना चाहता है, वो तभी पॉसिबल है जहाँ पर योग है। एक वर्ड भी लिखना है सहयोग तो उसके अंदर योग अक्षर लिखना ज़रूरी होता है। योग नहीं तो सहयोग भी नहीं। योग का बहुत सिंपल अर्थ वो है कनेक्शन, कनेक्शन संबंध या जोड़ कहें। तो जब हमारा किसी लक्ष्य के साथ या जिन लोगों के साथ हम कार्य करना चाहते हैं उनके साथ योग यानी कि कनेक्शन प्रॉपर नहीं है तो सहयोग भी प्राप्त नहीं होता या हम उनको सहयोग प्रॉपर कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। योग होगा जहाँ वहाँ सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। जिसका योग परम शक्ति परमात्मा के साथ है उसको तो सहयोग बहुत ही सहज रूप से प्राप्त होता है क्योंकि वो उस ऊंचे लक्ष्य के साथ कार्य कर रहा है अपने जीवन में और उस ऊंचे लक्ष्य के लिए वो सबका सहयोगी बनता है और सर्व से सहयोग प्राप्त करता भी है। तो सहयोग का गुण हमें किस क्यों ज़रूरी है अपने जीवन के अंदर धारण करना, क्योंकि जब हम सहयोग का गुण प्रयोग करते हैं तो जो भी लक्ष्य हमने लिए हैं उन लक्ष्य को पूरा करने में ना जो सहयोग हम दूसरों से प्राप्त करते हैं या हमारे द्वारा जो दूसरों को सहयोग प्राप्त होता है और उसके रिटर्न में जो हमें फिर सहयोग प्राप्त होता है तो उस ऊंचे लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो है वो वो बहुत ज़रूरी गुण वो है सहयोग का गुण। बड़े से बड़े कार्य, पहाड़ को उठाने जैसे कार्य भी जो है वो सहयोग के माध्यम से इजी हो जाते हैं। तब बड़े से बड़े डिफ़िकल्ट लगने वाले टास्क जब हम साथ मिलकर के करते हैं तो वो सहज और आसानी से पार हो जाते हैं। और सहयोग का जो गुण है वो हमें एक दूसरे के को अंडरस्टैंड करने में भी मदद करता है, एक दूसरे को समझने में, उनकी गुण को, उनकी शक्तियों को समझने में, उनके अंदर की विशेषताओं को, स्किल्स को अंडरस्टैंड करके उस टास्क में यूज़ करने के लिए भी सक्षम बनाता है। जब तक हम दूसरों के संपर्क में आएंगे नहीं, उनके सहयोगी बनेंगे नहीं, तब तक हम उनके भी गुण और विशेषताओं को नहीं पहचान पाएंगे और ना ही लोग हमारे गुण और शक्ति को पहचान पाएंगे। अगर हम चाहते हैं अपने जीवन में प्रोग्रेस करना तो हमारे जो गुण और शक्तियाँ हैं वो भी जो है जब दूसरों को पता चलती हैं तो हम आगे अपने कार्य के लिए अपने रास्ते को सहज करते जाते हैं, क्योंकि दूसरों का भी फेथ हमारे अंदर तब होता है जब वो हमें अंडरस्टैंड करने लगते हैं कि भाई ये काम ये कर सकता है, ये गुण इसके अंदर है, या ये शक्ति इसके अंदर है, या ये कला ये जानता है, ये कर सकता है। तो वो निश्चय के साथ, फेथ के साथ हमें ना कोऑपरेट करते हैं। इसीलिए हमें दूसरों के साथ मिलकर के काम करने में अपने काम को ईजी करना ना सहज हो जाता है। और इसी के साथ साथ जो है हमारी जो हाइट ऑफ अचीवमेंट है उसको भी बढ़ा देता है सहयोग का गुण। एक ही काम अगर एक व्यक्ति कर रहा है तो वो उस कार्य को करने में अपना कितना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करता है और इसीलिए उसको समय भी ज़्यादा लगता है और डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो है वो नहीं प्राप्त हो पाते हैं। और अकेले होने के कारण से थकावट भी आती है, रुकावट भी आती है, ऑब्स्टिकल्स को जो है वो अपॉर्चुनिटी न समझ करके कभी कभी निराशा भी आती है। लेकिन जब हम सर्व के सहयोग से करते हैं तो वो सुखमय संसार की स्थापना यानी कि अपने जो लक्ष्य को है वो सही रीति से पूरा कर पाते हैं, थकावट को रुकावट को हम ख़त्म कर पाते हैं। एक ही व्यक्ति अकेला अकेला करते तो थक जाता है, लेकिन सबका साथ होता है तो सभी की प्रोग्रेस होती है। तो हर एक की प्रोग्रेस का भी आधार जो है वो सहयोग की शक्ति है। तो सहयोग से हर एक ना ऊंचा उठता है, हर एक प्रोग्रेस करता है, हर एक के जीवन में जो है वो खुशी अनुभव कर पाता है। इसीलिए सहयोग का गुण जो है बहुत अच्छा गुण एक हार्मनी इस संसार के अंदर क्रिएट करने के लिए है। एक सुंदर संसार अगर हम बनाना चाहते हैं ना, गाते भी हैं कि सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, तो सबका सहयोग चाहिए ना। सहयोग एक अकेले व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उस टास्क से जुड़े हुए हैं। तो हर एक को सहयोग करना होता है जो कार्य हम करने, एक कॉमन गोल है हमारा, अगर हम जिनके साथ काम कर रहे हैं हमारा वो कॉमन गोल है, चाहे वो परिवार है तो परिवार को सुचारू रूप से चलाना और उनकी प्रोग्रेस करना ये कॉमन गोल है। तो इसमें जो उसमें बड़े बुजुर्ग होंगे, जो उस समय युवा होंगे, जो बच्चे हैं, हर एक उस टीम के मेंबर हैं और हर एक को एक दूसरे को सहयोग करना होता है। अगर परिवार में एक दूसरे को सहयोग ना करे तो वो परिवार के अंदर कलह क्लेश कॉन्फ्लिक्ट ये सब चीज़ें उत्पन्न होती है और वही घर का माहौल जो है वो बहुत हैवी, बहुत ही बर्डन वाला फील होने लगता है। एक दूसरे को न जैसे कि सहयोग ही नहीं कर रहे हैं तो वहाँ दुख परेशानी कॉन्फ्लिक्ट ना मन मुटाव आदि होता रहता है। लेकिन जब हमारा कॉमन गोल है तो हमें एक दूसरे को सहयोग ज़रूर करना चाहिए और जब हम सहयोग करते हैं तो हमारे उस कॉमन गोल को अचीव कर पाते हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो हमारा समाज हो, चाहे वो हमारा कार्यक्षेत्र हो। कार्यक्षेत्र में भी जब हम जाते हैं तो हम देखें हमारे टीम के हर मेंबर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जैसे गाड़ी के हर पुर्जे का इम्पॉर्टेंट रोल होता है ना। कोई एक पुर्जा भी ठीक से काम नहीं करता है तो गाड़ी है ना का एक्सीडेंट हो सकता है या गाड़ी रुक सकती है। इसी तरह से हमारे जीवन के अंदर भी हमारे हर एक जो सहयोगी हैं ना हमारे साथ कार्य करने वाले हैं, वो सब का एक इम्पॉर्टेंट रोल है और उसको हमें वो इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जब हम वो इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने सहयोग देते हैं इस प्रकार से कि उस कार्य के लिए हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को ना अप्रिशिएट कर रहे हैं, तब वो हमारे सहयोगी भी बन जाते हैं क्योंकि हम उन्हें सहयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे कार्य क्षेत्र को देखें तो प्यून से लेकर के, वॉचमैन से लेकर के ना जो टॉप मैनेजमेंट है वहाँ तक, हर एक उस टीम का मेंबर है और हर एक को दूसरे की ज़रूरत है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है या उसकी ज़रूरत नहीं है, ना हर कोई को एक दूसरे की ज़रूरत है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर एक किसी न किसी दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहा है, सहयोग दे रहा है। आप देखिए रोड पर खड़ा हुआ ट्रैफिक पुलिस, ना वो भी तो हमें सहयोग दे रहा है ताकि ट्रैफिक जो है वो सही रीति से मूव करता रहे। अगर वो ट्रैफिक पुलिस उस धूप में खड़े होकर, मिट्टी धूल सब चीज़ें वहाँ पर है, इतनी शोर है, आवाज़ें हैं, पोल्यूशन है, वहाँ खड़ा रह करके अपनी ड्यूटी दे रहा है और सारे ट्रैफिक को सही रीति से नियंत्रित कर रहा है तो वो हमें सहयोग दे रहा है ना। तो हमें हर एक की ज़रूरत होती है, तो इस तरह से हर एक दूसरे को सहयोग दे करके ही इस संसार को सुखमय संसार बना सकते हैं। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ हम समझ ले कि मुझे भी सहयोग की ज़रूरत है दूसरों से, तो मेरा सहयोग भी किसी न किसी को चाहिए। हर कोई को एक दूसरे का सहयोग चाहिए और इस सहयोग के गुण से ही हम एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं, सशक्त कर सकते हैं और एक बेहतर समाज की स्थापना कर सकते हैं। अगर एक पेशेंट डॉक्टर को या डॉक्टर पेशेंट को कोऑपरेट नहीं करे तो वहाँ पर भी ट्रीटमेंट ठीक से ना हो पाए। हर एक का कोऑर्डिनेशन है। आज एक व्यक्ति पहाड़ पर भी चढ़ता है तो उसको सहयोग चाहिए होता है ना अपने सारे इक्विपमेंट्स का। अगर वो चीज़ों को वो सही रीति से लेकर ना जाए, जितने पहाड़ पर चढ़ने वाले पूरे ग्रुप और हर एक को उस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, चाहे वो उसकी रस्सी हो, चाहे पहाड़ पर चढ़ने के लिए जो भी सामग्रियाँ चाहिए वो हर एक को लेनी होती हैं, तभी वो अपने उस टास्क को पूरा कर पाते हैं। अगर सहयोगी नहीं बनेंगे ना, तो सहयोग जो है वो एक रोप की समान है ना, तो जैसे जैसे हम कदम आगे बढ़ाते जाते हैं अपने, वो सहयोग की रस्सी जो है वो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। हमारे जीवन में भी सहयोग उस पहाड़ पर चढ़ने की रस्सी की तरह मदद करता है और इस रस्सी की ज़रूरत हर एक को है ना, हर एक को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है। अकेला अकेला व्यक्ति हर चीज़ नहीं कर सकता। हर चीज़ हमें आती है नो डाउट, लेकिन समय की भी सीमा होती है। अगर हमने कोई कार्य सोचा हम खुद ही कर लेंगे, लेकिन वो समय के बाद हुआ ना, ज़रूरत थी जिस समय पर, उस समय नहीं हुआ तो भी उसकी वैल्यू नहीं रह जाती है। इसीलिए हमें हर एक का सहयोग प्राप्त करना और दूसरों को सहयोगी बनना, ये एक गुण से अनेक प्रकार की प्राप्तियां हम कर सकते हैं। अब ये सहयोग के गुण में ना कहाँ डिफ़िकल्टीज आती है, क्यों हम सहयोग कर नहीं पाते दूसरे को या दूसरे का सहयोग ले नहीं पाते हैं, उसका रीज़न क्या है? तो सबसे पहला रीज़न जो है वो है ईगो, अभिमान। अभिमान के कारण से ना कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अभिमान के कारण से समझते हैं मैं बहुत समझदार हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही होना चाहिए। इस प्रकार का जो अभिमान होता है, उस अभिमान के कारण से हम दूसरों पर अपने विचारों को थोपने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर सामने वाला अगर उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता है ना, या जो बात है उसको अपोज करता है, तो वहाँ और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं और फिर वो जो बड़ा लक्ष्य है वो साइड में रह जाता है और आपसी टकराव के कारण से हम उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ईगो जो है वो हमारे आपस के सहयोग के अंदर ऑब्स्टिकल बनता है ना, वो हमारी एनर्जी ड्रेन कर देता है। इसीलिए सहयोग प्राप्त नहीं कर पाते या दूसरे को सहयोग नहीं दे पाते हैं ना। मैं क्यों जाऊं सामने से, मैं क्यों उसको बोलूं, उसको ज़रूरत है तो वो मेरे सामने आए, ये भी तो ईगो है ना। हमें पता है कि इस कार्य में मेरी विशेषता है ये और मैं ये कर सकता हूँ और उसको इस चीज़ की ज़रूरत भी है, तो हम उस सहयोग बनकर, सहयोगी बनकर ना सामने वाले को भी परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अभिमान के कारण से हम इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं, उनको अपना सहयोग दे करके सामने वाले को भी परिवर्तन करके सहयोगी बना सकते हैं हम, लेकिन अभिमान हमारी इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को हमें मिस करा देता है ना। जहाँ पर फोर्स करने की बात आती है, जब हम दूसरों पर फोर्सफुली कोई चीज़ करने के लिए कह रहे हैं और वो उसका रिस्पॉन्ड जो है वो पॉजिटिव नहीं देता है, तो फिर वहाँ पर एंगर उत्पन्न होता है, गुस्सा, क्रोध के द्वारा भी जब हम काम कराते हैं। तो कोई व्यक्ति में बहुत सारी कलाएं हैं, बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन वो गुस्सा कर रहा है, तो गुस्सा करने वाले व्यक्ति के साथ कौन रहेगा, उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक ना भाई थे ऐसे ही, बहुत क्रोधी, इतने क्रोधी कि परिवार के अंदर या ऑफिस के अंदर ना वो कोई भी उनके सामने जाने से डरते थे ना, इतना क्रोध वो करते थे। और उनकी अपनी स्किल्स के अंदर वो बहुत माहिर थे, अपने हर कार्य को एक्यूरेट करते थे, लेकिन गुस्से के कारण से लोग सोचते थे कि भाई किसी और से करा लेंगे या किसी और की मदद ले लेंगे, किसी और के तरह साथ काम कर लेंगे, लेकिन उनके साथ करना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि रिएक्टिव है, बहुत गुस्सा करते हैं। तो देखो, हमने अपने ही जो प्रोग्रेस है उसको हमने ना रुकावट डाल दी, एक ऑब्स्टिकल खुद ही क्रिएट कर दिया उस गुस्से के कारण से। और क्रोध जो है ना, उसके कारण से हमने अपनी प्रोग्रेस में जो बैरियर क्रिएट किया खुद ही, तो फिर दूसरों का सहयोग प्राप्त नहीं होता और ना कोई हमारे से सहयोग लेना चाहता है, तो हमारी स्किल्स किस काम की रहेंगी, फिर उसको हम यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इसीलिए ये क्रोध जो है वो भी एक ऑब्स्टिकल है जो हमारे सहयोग की लेन देन जो हमें करनी चाहिए वो नहीं करने देता है। और है एक चीज़ जिसके कारण से हम सहयोग प्राप्त नहीं कर पाते या दूसरों को सहयोग नहीं दे पाते, उसका रीज़न है कम्युनिकेशन गैप। अगर मुझे किसी से सहयोग चाहिए तो मुझे कम्युनिकेट करना होगा, क्योंकि सामने वाले को कोई ना स्वप्न तो नहीं आने वाला कि इनको मदद करनी है ना, इनको जा कर के करना है, लेकिन हम अगर कम्युनिकेट कर ले ना तो हम सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन की कमी होने के कारण कई बार सहयोग नहीं मिलता, या फिर राइट इन्फॉर्मेशन हम नहीं देते हैं उस कारण से भी सहयोग प्राप्त नहीं होता है ना। हम सोच रहे हैं कि हाँ ना उसको मुझे सहयोग करना चाहिए, लेकिन हमने उसको इन्फॉर्म ही नहीं किया कि भाई ये चीज़ है ना। मुझे किसी से सहयोग चाहिए तो मुझे कम्युनिकेट करना होगा, राइट इन्फॉर्मेशन देनी होगी। और किसी को सहयोग मुझसे चाहिए तो वहाँ पर भी ना हमें कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन की प्रॉपर शेयरिंग ज़रूर करनी होगी। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, कम्युनिकेशन ब्रेक होता है ना, या उस कारण से इन्फॉर्मेशन राइट शेयर नहीं करते हैं, तो वहाँ पर भी हम इस सहयोग के गुण से वंचित रह जाते हैं। और वहाँ पर हम जो फेस कर रहे हैं वो वर्क प्रेशर, वर्क लोड फेस करते हैं प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने के कारण से या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण से हम अपने ऊपर वर्क बर्डन क्रिएट कर लेते हैं। इसीलिए जब हम प्रॉपर कम्युनिकेशन करेंगे तो आपस में मिलजुल करके कार्य करने से वर्क प्रेशर भी ख़त्म हो जाता है। और जो एक और चीज़ होती है जिस कारण से हम सहयोग ले नहीं पाते या दे नहीं पाते हैं, उसका कारण है वो है हमारे अंदर में खुद में ही इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि भाई इनको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा तो फिर ये सारा कंट्रोल ले लेंगे, फिर ना मेरा पत्ता कट जाएगा, मैं कैसे आगे बढ़ूँगा, या मेरी सफलता का क्रेडिट इसको मिल जाएगा। तो ये अंदर में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ होती है ना, और इस कारण से हम ना सहयोग ले पाते हैं ना सहयोग दे पाते हैं ना, इसीलिए ऐसी इनसिक्योरिटीज़ को भी ना हमें चेक करना होगा अपने अंदर में कि कहाँ कौन सी चीज़ ये इनमें से है जिस कारण से हम सहयोग ले या दे नहीं पाते। और अंदर में जो है वो कंपटीशन की भावना भी होती है ना दूसरे के साथ, तो उस कारण से भी हम सहयोग ले और दे नहीं पाते हैं। भाई कॉम्पिटिटर है ये मेरा, तो ये आगे बढ़ जाएगा, अगर मैं इसको सहयोग करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा ना, मैं ये आगे बढ़ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, इसको कोई प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हमें लर्न करने के लिए मिल रहा है, हमें सीखने के लिए मिल रहा है ना, वो सहयोग में हम भी हिस्सेदार बन रहे हैं, ये हम भूल जाते हैं। और इस कारण से वो कॉम्पिटिशन में आ जाने के कारण से हम एक दूसरे का सहयोग प्राप्त नहीं करते हैं ना? अब इन सारी चीज़ों को अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं और सचमुच में एक दूसरे के सहयोग से अपने हायर एम को अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें अगर कुछ एक बातों पर हम ध्यान दें तो हम सचमुच में सहयोग के द्वारा एक सुखमय संसार या एक अपने हायर एम को अचीव कर पाते हैं। तो पहली बात उसमें जो है वो है, सहयोग के लिए हमारे मन के अंदर हमारी भावनाएं बहुत प्योर होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। शुभ भावनाएं जहाँ पर है वहीं पर कोऑपरेशन हो सकता है। हमारे इंटेंशंस प्योर है, हम सबका भला चाह रहे हैं, सबकी प्रोग्रेस चाह रहे हैं, एक ऐसे कार्य में अपने टाइम एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर सबका सहयोग ज़रूर मिलेगा, नहीं मिले ऐसा हो नहीं सकता। तो कोई भी बड़ा कार्य होता है उस कार्य के लिए भी हमारी पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, और हम उस कार्य में साथ देने वाले जो हैं उनके प्रति भी हमारी पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। अगर हमारे, क्योंकि टीम में तो हर प्रकार के लोग होते हैं ना, कोई स्लो भी होंगे, कोई फास्ट भी होंगे, कोई जो है कुछ काम करना चाहते होंगे, कोई काम करने की न करने की वृत्ति वाले भी होंगे, लेकिन सबको किस तरह से साथ लेकर के चलना है हमें, वो हमारी शुभ भावना ही वहाँ पर काम करती है। और सचमुच में जब बिल्कुल ऐसे लोग भी होते हैं ना जब टीम में कि वो कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं रखता ना, तो ऐसे लोगों का भी सहयोगी कैसे बना जा सकता है? तो उसके लिए हमें एक और गुण को डेवलप करना होगा, और वो है हर एक के अंदर अच्छाई देखने का गुण, यानी कि गुण ग्राहकता को हम अपनाएं ना। एक बार की स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ ब्रह्मा बाबा की। ब्रह्मा बाबा जो इस संस्था के फाउंडिंग फादर माउंट आबू में रहते थे और उनके साथ जो भाई बहने रहते थे, तो अराउंड 385 लोग रहते थे। अब 350-450 लोग जो रह रहे हैं वहाँ पर, उन सब के लिए सारे दिनचर्या सेट होती थी। ब्रह्म मुहूर्त में उठना ना, सवेरे मेडिटेशन करना, फिर जो भी ब्रेकफास्ट की तैयारी है, सब प्रकार की सफाइयाँ, कपड़े धोना, खाना बनाना, सब प्रकार की सेवाएं होती थी। तो सबकी ड्यूटीज़ डिवाइडेड होती थी, सब लोग कुछ ना कुछ में अपना सहयोग देते थे और सब मिल करके वो काम जो है ईजीली हो जाता था ना, कि भाई सब लोग आ गए सब्जी काट ली, सब लोग आ गए रोटी बना दी, तो 400 लोगों की रोटी फटाफट बन गई। तो इस तरह से जो कार्य करते थे सब सहयोग के साथ करते थे। अब एक भाई था उसके अंदर ऐसा भी जो कुछ नहीं करता था, कुछ माना कुछ भी नहीं, उसको कहेंगे ये ग्लास यहाँ पड़ा है ना, इसको उठा के वहाँ रख दो, तो उसके लिए भी वो आलसी था, वो कुछ करने को रेडी नहीं होता था। तो जो लोग सब कर रहे हैं तो जो न करने वाले को देखकर उनके संकल्प चलते हैं, तो किसी किसी के संकल्प चलते थे कि बाबा ये तो कुछ भी नहीं करता, जाके बाबा को सुनाते भी थे, लेकिन बाबा मुस्कुरा देते थे, कुछ बोलते नहीं थे, उसको शुभ भावना रखते थे उसके लिए ना, कि उसको रिजेक्ट नहीं किया उसको, लेकिन एक्सेप्ट किया। और उसकी एक विशेषता थी, लेकिन क्या विशेषता थी, एवरी डे वो बाबा के लिए एक फूल तोड़कर लाता था, दरवाजे पर खड़ा होता था। जब बाबा क्लास कराने आते थे, ज्ञान सुनाने के लिए आते थे, तो बाबा को वेलकम करता था, फ्लावर दे करके एवरी डे बाबा को वेलकम करता था। एक दिन बहुत तेज बरसात थी, वो सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो कहीं भी हो वो फूल ज़रूर लाता था। उस दिन भी बहुत तेज़ बरसात थी और उस बरसात में भी वो फूल लेकर आया बाबा के सामने और 5 मिनट पहले खड़ा हो जाता था वहाँ पर और बाबा को फ्लावर दिया। तो बाबा ने उसको मुस्कुरा कर देख कर कहा, बच्चे आज भी फूल ले आए ना, तुम्हारे अंदर जो विशेषता है ना वो और किसी में नहीं है। अब वो सोच में पड़ गया, मेरे अंदर विशेषता, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, मेरे अंदर क्या विशेषता है ना? फिर बाबा ने कहा ना, तुम्हारे अंदर जो विशेषता, तुम जो एक सेवा है तुम्हारे सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। तो वो और सोच में पड़ गया, मैंने तो आज तक ग्लास भी नहीं उठाया, ऐसी कौन सी सेवा है जो मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। तो बाबा ने उस समय पर एक सेवा थी जो सेवा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सभी भाई बहनें उठते थे, तो हिल स्टेशन था तो सुबह सुबह ठंड भी होती थी वहाँ पर, तो सबको ना गर्म पानी चाहिए होता था, तो फ्रेश होने के लिए गर्म पानी ना चाहिए होता था, तो बॉयलर में पानी गर्म करते थे। उस समय पर ऐसी फैसिलिटी नहीं थी माउंट आबू के हमारे सेवा के जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर कि नल में ही गर्म पानी आ जाए, लेकिन उसके लिए बॉयलर जलाना पड़ता था और बॉयलर में पानी गर्म हो फिर वो बाल्टी में भर करके ना जहाँ जो जो रूम्स है वहाँ तक पहुँचाना होता था। इस तरह की सेवा होती थी। तो भाई वो जो भाई था जो कुछ भी नहीं करता था, बाबा ने उसको कहा, देखो सबको सुबह सुबह ठंड में गर्म पानी मिलेगा तो कितना सुख मिलेगा ना, तो तुम्हें कितनी दुआएं जमा होगी। इतना प्यार से बाबा ने कहा, ये सेवा ना तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता ना। तो उसने बाबा को देखा और कहा, हाँ जी बाबा मैं ज़रूर करूँगा ये सेवा, और क्योंकि बॉयलर चलाना है, अगर 4 बजे पानी देना है सबको तो 2 बजे उसको उठकर कम से कम पानी के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और बाबा ने उसकी यही विशेषता देखी थी कि वो एक्यूरेट था कि एवरी डे सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो वो लेकिन फूल लेकर के 5 मिनट पहले दरवाजे पर बाबा को वेलकम करने के लिए खड़ा रहता था। तो उसकी उस विशेषता एक्यूरेट एंड एक्यूरेसी एंड पंक्चुअलिटी की ये जो विशेषता थी उसी को बाबा ने देख करके उसकी जीवन को भी बना दिया। उसने अपने जीवन के अंतिम श्वास तक वो सेवा की, उसका भाग्य बनाया। तो इस तरह से हम सबको आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं अगर हम उनके अंदर की अच्छाइयों को देख करके कार्य में लगाते हैं। और बाबा की उस व्यक्ति के प्रति बिल्कुल शुद्ध शुभ फीलिंग्स थी, शुभ भावनाएं थी, उसके गुणों को बाबा ने नोटिस किया और इसीलिए जब बाबा की पॉजिटिव एनर्जी, बाबा ने उसको सहयोग दिया, बाबा ने उसे कभी भी गुस्सा नहीं किया, कोई डांटा नहीं कभी भी, बाबा तो करते ही नहीं थे गुस्सा, लेकिन कभी भी उसको कोई शिक्षाएं ऐसी नहीं दी कि ये करो ये करो, कभी भी ऐसे नहीं किया, लेकिन और ही उसको एक्सेप्ट किया और उसकी विशेषता का वर्णन करके उसका जीवन भी बना दिया। तो इस तरह से जब हम दूसरों की अच्छाइयों को देखते हैं और उन्हें मदद करते हैं उन अच्छाइयों के साथ आगे बढ़ने के लिए, तो हम उनके सहयोगी बनते हैं, तो उनसे भी हमें सहयोग प्राप्त होता है। तो इस तरह से गुण ग्राहकता और शुद्ध भावनाएं हमारे सहयोग है दूसरों को आगे बढ़ाने में, और रिटर्न में उनका सहयोग हमें भी प्राप्त होता है। इसी तरह से जब हम हमारे अंदर हमारे लक्ष्य के प्रति और हमारे जो उस कार्य के अंदर उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो हमारे साथी सहयोगी है उनके लिए स्नेह और रिस्पेक्ट होगा, लव एंड रिस्पेक्ट होगा, तब हम सहयोग कर पाएंगे और उनका सहयोग प्राप्त भी कर सकते हैं ना। प्यार से ना हर कार्य सहज हो जाता है। कल हमने इस गुण के बारे में विस्तार से जाना था, तो प्यार से कैसे पत्थर भी पिघल जाते हैं, तो इस तरह से ना अंगारे जैसे भी होते वो भी ठंडे हो जाते हैं। तो स्नेह का जल ऐसा है, स्नेह का गुण ऐसा है, क्रोध जहाँ होता है, गुस्सा जहाँ होता है, वहाँ कहते पानी के मटके भी सूख जाते हैं, और स्नेह का जल जो है वो ना अंगारे को भी शीतल कर देता है। तो स्नेह में इतनी शक्ति है, पत्थर को भी पिघला सकता है। तो इस तरह से स्नेह की शक्ति जहाँ है और रिस्पेक्ट की भावना जहाँ पर है, वहाँ हम अपने लोगों से सहयोग प्राप्त भी कर सकते हैं और अपने लोगों को सहयोग दे भी सकते हैं। जिन लोगों के साथ हम कार्य व्यवहार में आते हैं, सारे विश्व के प्रति ना हमारी वो सद्भावना है और हम सहयोग दे सकते हैं और सहयोग ले सकते हैं। और सहयोगी जो व्यक्ति होता है ना, वो लिमिटेशंस में नहीं आता है ना, कि भाई कभी मेरा मूड अच्छा है तो सहयोग दे दिया, मूड अच्छा नहीं है तो सहयोग नहीं ना, मेरी स्थिति अच्छी है तो मैंने सहयोग दे दिया ना, आज सहयोग दे दिया कल नहीं देंगे, इतना सहयोग दे सकते इतना नहीं दे सकते ना, ऐसा फ्लक्चुएट नहीं करेगा ना। जो सहयोगी है, योगी है वो, तो योगी जो होगा वो सहयोगी होगा, सहयोगी है वो सहज योगी बन जाता है। तो इसीलिए योगी जो है वो फ्लक्चुएशन वाला नहीं होगा, सदा सहयोगी होगा। और जब हम सदा सहयोग करते हैं तो सचमुच में रिटर्न में भी सदा सहयोग प्राप्त करते हैं। नॉट नेसेसरी कि उसी व्यक्ति से हमें सहयोग मिले, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमने सहयोग देने के अच्छे संस्कार को तो डेवलप किया है और इसीलिए वो सहयोग प्राप्त हो जाता है। सहयोग देने का संस्कार है ना, मदद करने का संस्कार है, और इसीलिए वो सहयोग रिटर्न में हमको मिलता है। जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, आपने देखा कि कोई जो है रास्ते में किनारे पर अपनी गाड़ी को लेकर खड़ा है और उसकी टायर गाड़ी का पंक्चर हो गया है, आपने ना शुभ भावना से अपनी गाड़ी रोक करके उसको मदद कर दी ना, और आपको उसने थैंक यू कहा और आप आगे बढ़ गए। अब किसी समय कहीं पर आपकी गाड़ी खराब होगी तो वही मदद करने आएगा, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, है ना। लेकिन आपने क्योंकि सहयोग किया है तो आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से सहयोग अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए सहयोगी हमारी नेचर में होना चाहिए। जब हम सहयोग का नेचर रखते हैं तो रिटर्न में सहयोग हमें अवश्य मिलता है। एक बार की बात है कि किस तरह से, देखो थोड़ा सा सहयोग भी हम किसी को देते हैं ना, सहयोग देने का संस्कार है ना, तो वो संस्कार जो है वो किसी ना किसी रीति से हमारे सामने रिटर्न में आ जरूर जाता है। एक बच्चा जो पढ़ाई करता था और अपने लिए खुद ही कमाई करके ना अपनी फीस देता था ना, न्यूज़पेपर डालना और ऐसे छोटे मोटे काम करके अपने स्कूल की फीस जमा करता था, और वो कुछ दिन से उसका कुछ भी काम नहीं हो रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे, दो चार दिन से वो बहुत भूखा था, उसके पास पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, और वो कोई चीज़ सेल कर रहा था, वो सेल भी नहीं हो रही थी। तो उसने मन में सोचा आज कि मैं ना इनको नेक्स्ट डोर पर जा रहा हूँ, जहाँ वहाँ पर ना पहले मैं उनसे कुछ खाने के लिए ना डिमांड करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होने के कारण से उसने सोचा मैं कैसे मांगूँ। तो जब वो गया उस डोर पर, वहाँ दरवाज़ा एक महिला ने खोला और वहाँ से उसने कुछ खाने के लिए नहीं मांगा, लेकिन अपनी चीज़ जो है वो दिखाई और कहा मैं ये सेल करने आया हूँ, क्या मुझे पानी पीने के लिए मिल सकता है। तो उसको पानी की डिमांड उसने करी, और जब पानी का सहयोग मांगा उससे, तो वो बहन जो थी ना, वो महिला ने उसको देखा कि ये तो बहुत भूखा भी लग रहा है, तो उसने ला करके एक ग्लास दूध उसको पीने के लिए दे दिया। और जब दूध दिया उसे पीने के लिए, तो उसको बहुत खुशी हुई कि भाई मैंने मांगा नहीं लेकिन इसने मुझे दिया ना, तो उसको अंदर से दिल से दुआ निकली उसके लिए और थैंक्स कहा उसको, और फिर वो वहाँ से चला गया। बहुत साल हो गए, 15-20 साल हो गए, और उसके बाद एक दिन ना एक हॉस्पिटल के अंदर ये महिला जो है वो वहाँ पर एडमिट थी, और उसको बीमार थी बहुत ज़्यादा, कंडीशन उसकी क्रिटिकल थी। फिर जो डॉक्टर उसको ना सारा ऑपरेट कर रहे थे, देख रहे थे, उसकी ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो एक स्पेशलिस्ट को बुलाया गया उसके लिए। तो वो स्पेशलिस्ट ने आकर के देखा, तो उसने उसकी सारी ट्रीटमेंट की सही रीति से, सब चीज़ें उसको ठीक कर दिया, और फिर लास्ट डे उसको जब बिल मिला, तो बिल जो था वो बहुत ना बड़ा बिल था, लेकिन नीचे लिखा था जब बिल उसको दिया तो उसके पेड ना करके लिखा हुआ था। तो वो सोच में पड़ गई कि मेरा बिल किसने पे किया ना। तब वो डॉक्टर उसके सामने आया और कहा मैंने बिल पे कर दिया, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसको उसने याद दिलाया, जब मैं छोटा बच्चा था मुझे बहुत भूख लगी थी तो आपने मुझे पीने के लिए उस दिन दूध दिया था और मेरे को राहत मिली थी ना, उससे मुझे सपोर्ट मिला था, आपने जो उस दिन का सहयोग मुझे किया ना, उस दिन अगर मुझे वो सहयोग नहीं मिलता तो मैं पता नहीं क्या करता, लेकिन आपने वो सहयोग दिया, मुझे थोड़ी सी भी मदद की आपने, तो उसके रिटर्न में मुझे आगे ना अपना जो कार्य करने की शक्ति भी मिली और मेरी सही राह को मैंने ना बरकरार रखा, अपनी पढ़ाई, और मैं आज डॉक्टर बन गया हूँ। तो डॉक्टर बन गया, तो आपने जो वो दूध दिया था वही आपकी इस ट्रीटमेंट की फीस है, ऐसे करके उसने रिटर्न दिया। तो हमारे अच्छे कर्म जो होते हैं, सहयोग के कर्म जो होते हैं, शुद्ध भावना से, शुभ भावना से किए हुए कर्म जो होते हैं वो विफल नहीं जाते हैं। हम अच्छे भावना से सहयोग दे रहे हैं, रिटर्न अवश्य मिलेगा, लेकिन लेने की इच्छा नहीं रखनी है ना। कर्म कर, फल की इच्छा मत रख, फल आएगा ज़रूर, उसी समय मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मिलने वाला ज़रूर है। अपने कर्मों पर, अच्छे कर्मों पर हमें विश्वास रखना चाहिए और अपने अच्छे कर्मों को सदा करते रहना चाहिए, सहयोग हमें करते रहना चाहिए। तो जिस आत्माओं को सहयोग प्राप्त होता है वो दुआएं देती, हाँ, लेकिन कहाँ सहयोगी बनना ये भी समझना है ना। हमें अच्छे कार्य में सहयोगी बनना है ना, जहाँ उन्नति का कार्य हो, दूसरों की उन्नति हो, प्रोग्रेस हो, अच्छाई के रास्ते पर जो चल रहे वहाँ सहयोगी बनना है। गलत कामों में सहयोगी नहीं बनना कभी भी, किसी की गलती छुपाने में हम कहें कि सहयोग कर दे, नहीं ना, किसी ने झूठ बोला उसमें भी सहयोगी बन जाए, कोई गलत काम कर रहा है ना, कोई नशा कर रहा है उसमें भी सहयोगी बन जाए, ऐसे काम तो हमें हमारी पतन कर देंगे, इसलिए हमें सहयोगी गलत काम में कभी नहीं बनना है, अच्छे कार्य में हम सहयोगी बने ताकि उनकी भी उन्नति हो, हमारी भी उन्नति हो, तो समाज हम अच्छा बना सके, ऐसे कामों में हमें सहयोगी बनना है। उसके बाद जो है वो, जहाँ हमारी संगठन में हम जब चलते हैं तो सहयोग नहीं कर पाते, उसका रीज़न ये भी होता है कि जितने लोगों के साथ ज़्यादा काम करेंगे ना, उतने डिफरेंट थॉट्स होंगे, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होंगे या ना वहाँ टकराव ज़्यादा होंगे, इससे अच्छा मैं खुद ही कर लूँ। नहीं, ये भावना अगर हमारी है तो हम अपने आप को अकेला कर रहे हैं, हमें ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी, ज़्यादा थकावट होगी। इसके बदले अगर हम ये समझें कि जितने ज़्यादा लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ तो उतने ज़्यादा लोगों से मुझे अच्छी बातें सीखने को मिल रही है, उनके पास बहुत कुछ है जो मुझे प्राप्त होगा, सीखने के लिए प्राप्त होगा, किसी के अंदर कौन सा गुण है, किसी के अंदर कौन सी कला है, कौन सी विशेषता है, वो मुझे सीखने को मिलेगी। तो लर्निंग एटीट्यूड हमें सहयोगी बनने में मदद करता है। और दूसरा, मेरे पास भी कुछ है, अच्छे गुण, अच्छी शक्तियाँ, मेरे पास भी कोई कला है जो मैं दूसरों को दे पाऊँगा, सिखा पाऊँगा, जो ब्लॉक नहीं हो जाएंगी, वो आगे बढ़ती रहेंगी ना। तो ऐसी लर्निंग एटीट्यूड और गिविंग एटीट्यूड जहाँ पर होगा, ये दूसरों को सिखाने की भावना होगी, जब हमने किसी को कुछ सिखाया और वो उससे उन्नति करता है तो दुआएं किसको मिलती हैं, तो दुआएं सबसे बड़ी चीज़ होती हैं। तो सहयोग हमें दुआएं प्राप्त कराता है, तो इसीलिए दुआएं कमानी पड़ती हैं, मांगने से नहीं मिलती। और दुआएं जो होती है दवा से भी ना, जब दवा भी असर नहीं करती तो दुआएं काम आती हैं, इसीलिए कहते हैं दुआएं कमाई जाती हैं। और अच्छा कार्य हम करते हैं, सहयोगी बनते हैं, तो हम उन दुआओं को कमाते हैं, तो दुआएं कमाते रहें। और जहां हमारे मन में ना क्षमा भाव होगा ना, और भूलने की कला भी हमें आती होगी, वहां पर हम सहयोगी बन सकेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ पास्ट इंसिडेंट्स ऐसे हो गए होते हैं तो हम सोचते हैं हम क्यों सहयोग करें, या इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसको क्यों सहयोग करूं। तो हम क्षमा करने की भावना अंदर में रखें, क्षमा जब हम कर देंगे, दूसरों को क्षमा करेंगे, तो हम अपने आप को फ्रीडम देते हैं। क्षमा करके भूलना भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि भूलेंगे नहीं तो अंदर भावना शुभ नहीं होंगी, और वो शुभ और शुद्ध भावना नहीं है तो अगेन सहयोग पूरा नहीं दे पाएंगे, दिल से नहीं दे पाएंगे। तो दिल से सहयोग देंगे तो सामने वाले को भी परिवर्तन करने के लिए ना एक स्पेस मिल जाता है, और परिवर्तन करने के लिए शक्ति मिल जाती है। इसीलिए हम इस तरह से उनको भी ना एक सकारात्मक चेंज लाने में सहयोगी बनते हैं। तो हम भूलते हैं और क्षमा करते हैं उनकी बातों को, तो इस उनके परिवर्तन के लिए हमारा ये सहयोग है, दूसरों को मदद करना है और अपने आप को पहले मदद करना है। क्यों? क्योंकि जब हम दूसरों की बातों को पकड़ कर रखेंगे अंदर में, तो उससे बर्डन तो हमारे अंदर ही क्रिएट होगा, उससे हमारे अंदर इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन बना रहेगा और उस कारण से हम उनका सहयोग नहीं ले पाएंगे, ना उनको सहयोग दे पाएंगे। और सहयोग लेने और देने के लिए एक और चीज़ भी इम्पोर्टेंट होती है, और वो है इनिशिएटिव लेना, खुद कार्य करना। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा ने कभी भी कोई भी चीज़ किसी को भी बोल कर नहीं सिखाई, कह कर नहीं कहा कि आप ना ऐसे करो वैसे करो, ना बोल करके किसी को नहीं सिखाया। हर कार्य जो होते थे, बड़े बड़े काम भी होते थे, बाबा खुद आकर के बैठ जाते थे, उनको देख करके सब बच्चे उनके साथ मिल करके कर लेते थे, तो बड़े बड़े काम आसानी से हो जाते थे, ईजीली हो जाते थे। तो बाबा मोटिवेट भी करते थे, इंस्पायर भी करते थे, लेकिन खुद प्रेजेंट रह करके करते थे, वो काम खुद करते थे ना। जैसे सभी बच्चे, उनकी समझो सब्जी काटने की ड्यूटी थी और सब लोग बैठकर सब्जी काट रहे हैं, बाबा वहाँ से गुजर रहे हैं, बाबा देखते थे कि कोई भी बड़ा पीस काट रहा है, कोई छोटा काट रहा है ना, अलग अलग साइज़ की सब्जी कट रही है, तो बाबा बोल कर नहीं सिखाते थे ऐसे नहीं ऐसे करो, नहीं, बाबा बैठ जाते थे बड़े प्यार से ना, कहते थे आज बाबा भी बच्चों के साथ सब्जी काटेंगे, और बाबा बैठ जाते थे सब्जी काटने के लिए और एक जैसे पीस काटते थे, बाबा को देख करके बच्चे भी वैसा ही काटना सीख लेते थे और कर लेते थे। अनाज का ट्रक आया है ना, बोरियां हैं उठानी है ना, तो बाबा खुद वहाँ प्रेजेंट रहते थे, खुद करते थे और बच्चों को भी सिखाते थे ना, तो जो भाई बहनें वहाँ रहते थे सब सहयोग करके कर लेते थे। तो इस तरह से सहयोग से एक दूसरे के समीप भी आते हैं हम, सहयोग से बड़े बड़े कार्य भी सहज हो जाते हैं और सफल भी हो जाते हैं, और सहयोग से हमारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ जाती है, एक दूसरे की अच्छाइयों को, विशेषताओं को, कलाओं को यूज़ करके अपनी हाइट ऑफ अचीवमेंट को हम बढ़ा सकते हैं। तो इस सहयोग के गुण को हम अपने जीवन में अपनाएं। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, सहयोग हमें दूसरों से चाहिए तो हमें सहयोगी बनना होगा। हम सहयोग ना करें और सोचें कि दूसरे हमको सहयोग करते रहें, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। हमें दूसरों का सहयोगी बनना है, तो हमारी शुभ भावनाएं, हमारा सहयोग सामने वाले को भी सहयोगी बना देता है। तो इस तरह से सहयोग देना ही सहयोग लेना हो जाता है। तो हम सहयोग से सुखमय संसार बनाएं। अपने जीवन के अंदर आपने सहयोग करके क्या अनुभव किया है, उस पर आज चिंतन करिएगा। जहाँ आपने दूसरों को सहयोग किया, आपने क्या सीखा वहाँ पर, क्या लर्निंग्स ली ना, और इस तरह से दूसरे आपके कैसे, कौन से गुण के कारण आपके साथ सहयोगी बन गए, उनको देखिएगा। आपके कौन से गुण हैं जो दूसरों को आपका सहयोगी बनाते हैं, और कहाँ ऐसी चीज़ अंदर में है जो दूसरों को सहयोग करने में मुझे ना डिफ़िकल्टी आती है, या मैं दूसरों का सहयोग प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, उन चीज़ों को भी आज आइडेंटिफाई करिएगा और उनको ख़त्म करने के लिए अभ्यास ज़रूर कीजिएगा। मेडिटेशन से हम उन कमियों को आइडेंटिफाई करके ज़रूर ख़त्म कर पाएंगे। जब आइडेंटिफाई हो जाएंगे, बीमारी डायग्नोस हो जाती है, तो फिर ट्रीटमेंट तो होती होती ही है। जब तक बीमारी नहीं समझ में आती है, तब तक उसकी ट्रीटमेंट मुश्किल है। लेकिन सहयोग देने और सहयोग लेने के अंदर कौन सी वाली चीज़ है जो मुझे सहयोग देने या प्राप्त करने में ऑब्स्टिकल बन रही है, मेरे ऐसा कौन सा संस्कार है या मेरे कौन से ऐसे बातें हैं जो मुझे ये सहयोग के गुण का फ़ायदा लेने नहीं देते हैं ना। सहयोग दूसरों को देने और दूसरों से प्राप्त करने में बैरियर बनते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके आज उनके ऊपर वर्क करेंगे, उनको हम परमात्मा को दे दें और परमात्मा से उसके रिटर्न में ना शुद्ध और शुभ भावनाओं की एनर्जी लें, और सर्व के प्रति हम ये शुभ भावनाएं क्रिएट करें। अपना एक उंगली का सहयोग हमें देना है ना, एक ही उंगली का सहयोग ना। गोवर्धन पर्वत भी कैसे उठा, एक उंगली पर उठाया ना, तो एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा, अर्थात इस संसार से बड़े कार्य जो भी हम करना चाहते हैं वो सर्व के सहयोग से हो जाएंगे। हम सब भी एक उंगली का सहयोग दें अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज करने का, अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म कर अपनी अच्छाइयों को ना यूज़ करने का। हम अगर अपना ये प्रयास ना कि स्पीड को बढ़ा देंगे और इस पर फोकस करेंगे तो ज़रूर हम इस सहयोग के गुण से इस संसार को स्वर्णिम सुंदर हार्मनी वाला एक बेटर वर्ल्ड बना सकेंगे। तो हम सब बेटर वर्ल्ड चाहते हैं, एक सुंदर सुखमय दुनिया चाहते हैं, तो हमारा ये कॉन्ट्रीब्यूशन, हमें ये सहयोग अवश्य एक दूसरे को देना होगा। एक दूसरे के लिए हम शुभ भावनाएं रखें, अप्रिशिएट करें, दूसरे की अच्छाइयों को देख करके उनके साथ काम करें। और सहयोग के लिए सबसे बड़ा सहयोग हम परमपिता परमात्मा को याद करके करते हैं। इस संसार को अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने का काम जो कर रहे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, सबसे बड़ा सहयोग है। तो ये सहयोग करें हम और एक सुंदर समाज की स्थापना करें। ऐसी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। आज सेल्फ केयर सीरीज में हमने सहयोग के गुण को जाना। इस विषय में कोई भी प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हो, कोई अनुभव हो आपके पास सहयोग का, तो आप ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।